ओम शांति। क्या कर रहे हैं सभी पुरुषार्थ? क्या कर रहे हैं? बाबा ने बहुत कुछ कह दिया ना, क्या कर रहे हैं? करना चाहिए नहीं, क्या कर रहे हैं? माताएं आगे आ जाओ, डरो नहीं, आपसे नहीं पूछेंगे हम, आ जाओ, भाइयों से पूछते हैं केवल। हाँ बोलो भाई, बताओ क्या कर रहे हैं? हैं? फरिश्ता और निराकारी की ड्रिल चल रही है डॉक्टर साहब की, वाह ग्रेट। और अभी क्या कहा बाबा ने आखिर में? स्वमान और वरदान। किसी को याद हो एवर रेडी की क्या परिभाषा दी? एक सेकंड में संकल्प किया और एक सेकंड में स्वमान वरदान के अनुभवी स्वरूप में स्थित हो जाए। किसी चीज का भी बहुत जल्दी अनुभव उसके लंबे अभ्यास के द्वारा ही होता है। इसलिए बाबा हर मुरली में कह देते हैं अचानक, एवर रेडी, लंबा काल, बहुकाल। पुरुषार्थ तो सदा ही चलता रहेगा, विनाश के अंतिम दिन तक भी चलता रहेगा। जब तक हम जाएं तब तक हम करेंगे ही कुछ ना कुछ, लेकिन लंबे काल के अभ्यास से आत्मा सुख पाती है। बहुत बड़ी चीज है सुख पाना, अलौकिक सुख, ईश्वरीय सुख। जितना समय सारे दिन में हम अच्छे अभ्यास करते हैं, सबको अनुभव तो है ही, सुख मिलता है। इसलिए बाबा बहुत जोर दे रहे हैं कर्म योगी, याद है ना, योगी जीवन। कितना सहज बताया सुरेश भाई, जीवन दो चार घंटे का नहीं होता, जीवन माना जीवन सदा काल का, लंबा है। सोच रहे 80 साल का है, 70 साल का है, तो उसमें कर्म योगी। और पिछली बार कहा था जो अनुभव अमृत वेले बैठकर करते हो वही अनुभव कर्म के समय। तो देखिए बाबा हम सभी को बहुत सुंदर ट्रेनिंग दे रहा है। सबसे पहला परिवर्तन तो हम ये लाएंगे अपने में, सूक्ष्म परिवर्तन। माताएं भी ध्यान दें, बाबा ने कहा जो पावरफुल स्थिति अमृत वेले होती है वही सारा दिन कर्म में भी हो। सुन के सभी ने क्या सोचा? ये नहीं हो सकता। 99% ब्राह्मणों ने सोच लिया ये नहीं हो सकता, तो नहीं होगा। बहुत सूक्ष्म गति है, पहले से ही हार माने बैठे हैं, ये नहीं होगा, चेंज करेंगे, जो भगवान कहता है वो होगा। बोलो स्वीकार है? कुमार बहुत बैठे हैं सेवा में भी, होगा ना, अगर ना होता तो वो कहता क्यों? थोड़ी सी मेहनत की बात है, साधनाएं सबसे नहीं होती। जो दुनिया में भी साधक रहे ना सन्यासी, उनमें भी कई हजार में से कोई एक साधक होता है, बाकी सब मांगने खाने वाले, पूजा पाठ करने वाले, मंदिरों में रहने वाले, बस कपड़े पहन लिए, थोड़ा बहुत ध्यान में बैठ गए, बस। साधनाएं सबसे नहीं होती ये सत्य है, परंतु हम तो करेंगे ना। हम वो नहीं है जिनसे नहीं होती, हम वो हैं जिनसे होती है। तो अपने को पहले मानसिक रूप से साइकोलॉजिकली हम तैयार करें, हम करेंगे। ऐसा थोड़ा ही हो सकता है हम नहीं करेंगे, फिर भगवान क्यों कहता? तो इन बातों पे हम ध्यान देंगे। अब हम दो चीजों पे केवल चर्चा करेंगे। बाबा ने स्वमान के साथ वरदान शब्द भी जोड़ा, स्वमान और वरदान। कुछ स्वमानों को हम अपना वरदान बनाएंगे, हर एक, मैं ज्यादा न कहूं तो कम से कम एक वरदान कोई चुन ले, उसको वरदान रूप में स्वीकार कर ले, हम इसकी चर्चा करते हैं। दूसरी बात, चारों सब्जेक्ट के अनुभवी मूर्त स्वमानधारी, चारों सब्जेक्ट जिसमें योगी का क्या बताया, कर्मेंद्रिय जीत, याद है माताओं को, बहुत सुंदर स्थिति। देखो सारे जैन समाज में जैन का अर्थ ही है जितेंद्रिय, कर्मेंद्रिय जीत, उनके सारे साधु साध्वियों का लक्ष्य ही होता है कर्मेंद्रिय जीत, पर जीत नहीं पाते हैं। खाना पीना वो नहीं मिला जो सोच के आए हैं, रूस के ही भाग जाते हैं। एक जैन माता सुना रही थी ना, मैंने सुनाया एक दो बार, वो ज्ञान में क्यों आई, जैनी थे, मुनि को बुलाया था, मुनि की बाकायदे बैंड बाजे रखे हुए थे, स्वागत किया, दूर से ही यात्रा करा के लाए, घर में आए, भोजन परोसा। अब मुनि जी ने देखा वो तो नहीं है जो मैं सोच के आया था, मैंने सुना कि वो कुछ संकल्प करके आते हैं, ये होगा तो खाएंगे। अब बेचारे एक तो भूखे, एक दिन से एक ही बार खाते हैं, शाम को ही खाना था, अब वो भोजन था नहीं, उसने पूछा खीर नहीं बनाई, तो नहीं महाराज खीर तो नहीं बनाई। एकदम परेशान हो गए और गुस्से में उठ के चल दिए। अब आप हाल देखो क्या हुआ होगा उन वो सबका, वो जो गृहस्थी थे 10-20 तो थे ना, और भी आए थे, बेचारे पैर पकड़ रहे, हाथ जोड़ रहे, मुनिवर गलती हो गई, हमें तो पता नहीं था। और मुनि जी तेज, गुस्से में तेज चलता है ना मनुष्य चल के जा रहे हैं, सबको ऐसे ऐसे करते हुए जा रहे हैं। माता जी ने देखा, उसको कोई दूसरी जैनी माता कहती थी वहां चलो बहुत अच्छा ज्ञान है, वो मानती नहीं थी। उस दिन से कहा, ऐसा दिमाग हटा इन मुनियों से, आगे बाबा के पास। मैंने कहा अच्छा मुनि तुम्हें भगवान के पास ले आया, ये तो अच्छी बात है ना उसका क्रोध तो कर्मेंद्रिय जीत बनना। अब बेचारा एक दिन का भूखा था, एक दिन और भूखा रहा होगा, बोलो हाल उसका, पेट भूखा हो साधना होती है, बिल्कुल नहीं होती। तो कर्मेंद्रिय जीत, अंग अंग शीतल हो जाए, ये है योगी की पहचान। और यही हम स्वमान ले लें, योगी के तो बहुत सारे स्वमान हैं, मैं स्वराज्य अधिकारी हूं, मैं कर्मेंद्रिय जीत हूं, मैं योगयुक्त हूं, बहुत सारे स्वमान योगी के ही हैं। मैं लाइट हाउस हूं, माइट हाउस हूं, फरिश्ता हूं। ज्ञान, ज्ञान के बारे में क्या कहा, अंग्रेजी बोली बाबा ने पहली बार लंबी लाइन, नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। माताएं बोले जरा पीछे वाली, बोलो नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। नॉलेज तो सुनते हैं ना ज्ञान, लाइट माइट भी सुनते हैं, सहज है। तो नॉलेज लाइट है, प्रकाश है। लाइट के दो अर्थ ले लें, हल्कापन और प्रकाश, ज्ञान, ज्ञान प्रकाश है। हमारे कर्म, हमारा जीवन सरलता से भरपूर हो, हल्के हो गए हो, और कोई भी हमें देखकर, हमारे कर्म देखकर, हमारे बोल सुनकर महसूस करे ये ज्ञानी आत्माएं हैं, बुद्धिमान हैं, अलौकिक हैं। माइट शक्तिशाली, ज्ञान बल है, ज्ञान में भी बल है। एक एक ज्ञान की बात हमारे लिए बल हो। रोज मुरली सुनते हैं, बल बढ़ता जा रहा है ना आत्मा में, वो बल भी बढ़ता जा रहा हो। ये नहीं हम कहें कि बाबा ने तो इतनी अच्छी अच्छी बातें कही, हमसे तो धारण नहीं होती, तो ये ज्ञानी आत्मा के लक्षण नहीं। तो मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं मास्टर नॉलेजफुल हूँ, मैं सुदर्शन चक्रधारी हूँ, मैं मास्टर त्रिकालदर्शी हूँ, ये ज्ञान के स्वमान हो गए ना। ज्ञान सत्य है, सत्य है, मेरे पास सत्य की शक्ति है। तो हम सभी ज्ञान के स्वमान पर भी ध्यान दें। मैं स्वराज, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूं, सबसे श्रेष्ठ, मास्टर त्रिकालदर्शी, मास्टर ज्ञान सागर, ज्ञानी आत्मा हूं, ज्ञानी आत्मा हूं। लाइट हाउस माइट हाउस हूं, ये भी ज्ञान का हो गया, योग का भी हो गया। धारणा, बाबा ने तो सहज बोल दिया ज्ञान और योग होगा, धारणा स्वतः ही दोनों उसी के बल से आती हैं। ज्ञान ने हमें सिखाया ये धारण करो, योग ने उसे धारण करने की शक्ति दी। ज्ञान और योग का बल होता है तो धारणाएं स्वतः ही हमारे जीवन में आती जाती हैं। मैं मायाजीत हूँ, मैं विजय रतन हूँ, मैं देवकुल की महान आत्मा हूँ, ये ज्ञान से संबंधित हमारे स्वमान है और धारणा से संबंधित। धारणा स्वरूप हो गए ना हम, इस संसार के लिए प्रकाश स्तंभ हैं हम, लाइट हाउस हैं। धारणा प्योरिटी भी धारणा का स्वमान है, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, ये धारणाओं का बीज हो गया हमारा। ये स्वमान हमारी धारणाओं को श्रेष्ठ कर देते हैं। सेवा में सफलता, अनुभवी क्या हो सेवा के, सेवा की सफलता के अनुभवी। देखिए सेवाओं में उल्टे भी अनुभव होते हैं, जो बाबा आजकल हमें सभी को दे रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे सेंटरों को काम दिया, सेंटर कैसे हो जाए निर्विघन, हमारे भी तो मुख्य सेंटर हो गए ना, हमारा ज्ञान सरोवर या हमारा पांडव भवन, हमारा शांतिवन निर्विघन हो, ऐसी सेवाओं की सफलता। कौन सा स्वमान हो गया, मैं विघन विनाशक हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, यह भी सेवाओं की सफलता का स्वमान है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, करण करावनहार बाबा है मैं निमित्त हूं, यह भी स्वमान हो गया। तो इन सब पर हम ध्यान दें, जिसका अपना जीवन निर्विघ्न है उसका स्थान और उसकी सेवाएं भी निर्विघ्न रहती हैं। विघ्नों का एक ही कारण दिखाई देता है, बताओ कौन सा है वो, अपवित्रता। उसके ही दो बड़े स्वरूप दिखाई देते हैं, क्रोध और अभिमान। जहां भी सेंटर्स में विघ्न पड़े, क्रोध और अभिमान के कारण पड़े, कहीं कहीं जो प्रैक्टिकल इम्प्योरिटी उससे भी पड़े हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल स्वरूप दिखाई देता है क्रोध और अभिमान। जो निमित्त आत्माएं हैं उनमें यदि प्योरिटी का बल ना हो तो बिना मतलब भी विघ्न आने लगेंगे, कोई ऐसा वैसा ही आके विघ्न डाल देगा। भूत प्रेतों के विघ्न भी आते हैं, आजकल बहुत चल रहे हैं, बहुत चल रहे हैं, इविल सोल्स के विघ्न बहुत ज्यादा चल गए, सेंटरों में बहुत चल गए हैं। खोल के ही बता दूं, माताएं बहुत कर रही हैं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, माताएं बहुत कर रही हैं। आज ही मेरे को एक बहन आई मिली कि भाई हमारी यही हमारे पास ही है वो सेंटर, कहा हमारे सेंटर में तो एक माता आती है बहुत पुरानी है, हमें पता चल गया वो तंत्र मंत्र करती है, उसने तो सेंटर में सेवा ही नहीं बढ़ने दी है, कोई भी अच्छा स्टूडेंट आए कुछ कर देती है वो आता ही नहीं। फिर पाप है पुण्य, महापाप, एक शब्द और जोड़ दे, ऐसी माताओं को जन्म जन्म अति कष्ट में गुजरना होगा। अब भी जो भी तांत्रिक क्रियाएं करते हैं उनका भविष्य सुंदर नहीं होता, तंत्र मंत्र करने वालों की दुर्गति हमने देखी है। मुझे बताते हैं लोग, ज्ञान में आ गए ना, हम तंत्र मंत्र करते थे, अब तंत्र विद्या कल्याणकारी है लेकिन लोग पैसा कमाने के लिए कष्ट देना, विरोध करना, बदला लेना, बस किसी से गुस्सा हुआ कर दिया। एक कुमार का अनुभव, कितना कष्ट होता है मनुष्य को। उड़ीसा का कुमार वही है, बहुत मजबूत ज्ञान में, माँ बाप और मामा तीनों ने मिलकर ज्ञान से हटाने के लिए उस पर बहुत तांत्रिक क्रियाएं करे, पैसा लगाया बहुत। वो मेरे से, ये बात 3 साल पहले की है, मुझे फोन करता, मैं उसको सिखाता, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तांत्रिक शक्ति मेरे आगे कुछ नहीं है, बहुत हिम्मत से चला। लास्ट में उन तीनों ने इस पर मारक शक्ति का प्रयोग करा। एक शक्ति मारक शक्ति भी होती है, वो कुर्सी पर बैठा था, वो शक्ति इसको न लग के कुर्सी को लगी, कुर्सी चूर चूर हो गई, ये बस नीचे गिरा। मुझे फोन किया, ऐसा हो गया है। मैंने कहा बस पूरा हो गया खेल, अब तुम जीवित हो, तुम्हारी विजय बाबा की विजय है। तीनों चरणों में आ गए उसके। थोड़ी देर के बाद ही उन्हें पता चल गया इसको तो कुछ हुआ नहीं, कुर्सी टूटी है। देख लो आप, माँ बाप और मामा, कैसी होगी वो माँ? मैंने कह दिया उडायन है, कभी न जाना उसके पास। उसने मान लिया, हाथ जोड़े, हमारे घर आ जाओ। उसने कह दिया तुम डायन हो। अब क्या हुआ पिछले हफ्ते? क्योंकि जो तंत्र मंत्र में ज्यादा चले जाते हैं, उसके बाप ने सुसाइड किया बिना कारण, कोई कारण नहीं, टीचर था, सब कुछ अच्छा, सुसाइड किया। क्यों? वही जो दूसरों पे करा रहे थे वो उस पे आ गया वापस। अब बेचारे को इसको घर में गया, कल मुझे फोन किया, जो भी आता है कहता है बाप को तुमने मारा है। अब देख लो नई समस्या, अब दुखी बेचारा बहुत। कहा मुझे घर में रहना पड़ रहा, मैंने उसे कहा चुपचाप घर से बाहर निकल जाओ बस, तुम उस घर से तुम्हारा कोई नाता नहीं, मार हो रही है, रोने दो, उसका भविष्य रोने का ही है। अब जो अपने एक लड़के को मारना चाहती, एक ही लड़का, वो माँ है, तो आज वो निकल गया है क्योंकि क्रियाओं के लिए उसको रहना पड़ा इतने दिन। तो देखिए ऐसी ऐसी समस्याएं सेंटरों में भी आ रही हैं। तो सभी इस पे ध्यान दें, ये बहुत बड़ा पाप है। लेकिन हम पे कोई कराए तो हम प्रैक्टिस रखें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इसके आगे संसार की सभी तांत्रिक शक्तियां फेल हैं, कोई काम नहीं कर सकती। लेकिन हमें अच्छा अभ्यास चाहिए। अगर हमारे अंदर डर होगा, कोई शक्ति काम न कर दे, कुछ हो न जाए, तो हम निर्बल हो जाएंगे। हमारा भय जो निगेटिव शक्तियां हैं उन्हें आकर्षित कर लेता है, तो हम सभी बहुत अच्छे स्वमान में चलेंगे। कुछ स्वमानों को अपना वरदान बनाएंगे। मैंने आपको कहा एक चुन लो कोई, आप, मैं आपको कुछ बता देता हूं। हमारा स्वमान है मैं विघ्न विनाशक हूं, इसको आप वरदान बना दें। बनाने का अर्थ है सच्चे दिल से स्वीकार कर लें, सच्चे दिल से मैं हूं। और एक बहुत अच्छी विजन बनाए, एक चित्र बनाए कि बाबा मेरे सामने है और बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है और दृष्टि देते हुए कहा बच्चे तुम विघ्न विनाशक हो, ये बाप का तुम्हें वरदान है, जहां भी तुम्हारे कदम पड़ेंगे वहां के विघ्न नष्ट हो जाएंगे। तुम दूसरों के विघ्न नष्ट करोगे, रोज कर लें जरा कुछ दिन तक, बहुत मजा आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वरदान है। दूसरा वरदान, तुम बिगड़ी को बनाने वाले हो, इसको ले लें। तीसरा वरदान, सफलता तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। चौथा जो सबसे पावरफुल है, मेरी सारी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, कोई भी एक चुन लें, और भी बहुत सारे हैं, मैं विजयी रतन हूं, जहां भी हाथ लगाऊंगी विजय ही होगी, कोई भी एक चुन के, एक दो तीन, एक मैं कम से कम कह रहा हूं, लेकिन कोई भी एक वरदान बहुत काम आएगा हमें आगे चलकर। वरदान को वरदान ले लें, स्वमान को वरदान बना दें, मैं प्रकृति की मालिक हूं, प्रकृति मेरे आदेश का पालन करेगी, ये वरदान बन जाएगा। अब वरदान वरदान कैसे बनेगा और वरदान फलीभूत कैसे होगा? जो बाबा ने कहा ना, एक सेकंड में वरदान को फलीभूत करते हुए अनुभवी स्वरूप बन जाओ, एक एक सेकंड में होगा। बाबा की तो हर बात सेकंड की होती है ना, लेकिन हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। पहली बात, बहुत सुंदर बाबा का महावाक्य है, बाबा ने हम सबको गाइड किया है, जो आत्माएं लंबा समय ईश्वरीय नशे में रहती हैं, उनकी बुद्धि में वरदानों को धारण करने की शक्ति आ जाती है। बहुत सुंदर बात है। ईश्वरीय नशा, देखो अब ईश्वरीय एक नशा जो हमारी पढ़ाई का स्वमान भी है, ज्ञान का स्वमान। मैं गोडली स्टूडेंट हूं, भगवान पढ़ाता है, नशा है ना स्वमान। ये नशा हमारी बुद्धि को समर्थ बनाता है वरदान धारण हो। बुद्धि में धारण होते हैं ना, देखो बुद्धि एक ऐसी चीज है, धारण करना माना उसमें समा गया। हमने ज्ञान की एक बात सुनी, वो बुद्धि ने स्वीकार कर ली, अर्थात उसमें धारण हो गई। हम रोज बाबा की मुरली सुन रहे हैं, हमने बहुत अच्छी तरह सुन लिया, बच्चे किसी को दुख ना दो, और हमारी बुद्धि ने इसको स्वीकार कर लिया। कितनी सुंदर बात है, बच्चे किसी को दुख ना दो, स्वीकार कर लिया, धारण हो गई बुद्धि में। अब इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे तो वो परमानेंटली धारण हो जाएगी। और मान लो हमने उसकी प्रैक्टिस नहीं की, ध्यान नहीं दिया, बात तो बहुत अच्छी थी, लेकिन कर्म क्षेत्र पर जाकर हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, हमारे द्वारा फिर दुख दिया गया, तो वो जो धारण हुई थी ना बुद्धि में, समाई गई थी, वो बाहर आ गई। ये छोटी सी गति हम ध्यान रखेंगे, इसको कहते हैं फलीभूत करना, उसका यूज करना, प्रैक्टिस में लाना। तो जो ईश्वरीय नशे हैं, बहुत सारे नशे हैं, उनको हम लाते रहे, हमें भगवान मिल गया, वो हमें पढ़ाने आता है, वो हमारी पालना कर रहा है, हम उसके कितने समीप आ गए हैं, वो हमारा है, ये नशे है ना। इनके द्वारा बुद्धि सक्षम हो जाएगी, समर्थ, कि वो वरदानों को रख सके अपने में, नहीं तो निकल जाएंगे ना। तो हमें बुद्धि को इस योग्य बनाना है ईश्वरीय नशे से। वरदानों का महत्व बताते हुए बाबा ने एक बहुत सुंदर बात कही है, सबको याद रखनी है वो। वरदान में शक्ति है आग को पानी में बदलने की। भाषा है ना ये, आग जैसी बात को पानी जैसी शीतल कर देने की, आग जैसी समस्या को पानी जैसा हल्का कर देने की, याद रखेंगे हम, ठीक है। 2 साल पहले बहुत अच्छी बात कही है वरदान के लिए, हमने यहां क्लास में भी सुनाई है, बहुत उन्हें प्रैक्टिस की है। रोज सवेरे अमृत वेले वरदानों को स्मृति में लाओ, अनुभव में लाओ अच्छी तरह, और कर्म क्षेत्र पर कर्म से पहले याद करो। बहुत अच्छी बात कही, बहुत सुंदर रहस्य है, सृष्टि का रहस्य है वो, ध्यान से सुन लेंगे सभी। भक्ति में ये बात बहुत चलती आई है, श्रेष्ठ स्मृति से कर्म आरंभ करना और साधारण स्मृति से कर्म आरंभ करना, दोनों में महान अंतर है। सबको मालूम है, हम कोई घर बना रहे हो, घर की नींव रख रहे हो, पंडित को बुलाते हैं ना, भाई मंत्र जाप करेंगे, कुछ विधि विधान करेंगे, क्यों? ताकि एक कर्म की शुरुआत शुभ विचारों से प्रारंभ हो। गृह प्रवेश भी करेंगे तो ऐसे नहीं घर बन गया चलो भाई सो जाओ, कुछ करते हैं ना, विधान है भक्ति के। लोग सोचते हैं इनकी क्या जरूरत है, देखो बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाई में दाखिला दिलाते हैं, कुछ करते हैं। कर्म की शुरुआत जिस भावना से, जिस स्मृति से, जिस फीलिंग से की जाती है, संपूर्ण कर्म पर उसका प्रभाव बना रहता है आजीवन। बहुत सुंदर रहस्य है। हम कर्म करते हैं, माताएं ध्यान दें, आप घर में खाना बना रही हैं, आपको एक नेचुरल स्मृति है, ये खाना परिवार के लिए, बच्चों के लिए है, ये तो है नेचुरल स्मृति। पर ये स्मृति चेंज करें, खाना बना रहे हैं बाबा के लिए। देखना अंतर, एक छोटे से परिवर्तन से आप अंतर देख सकते हैं अपने गृहस्थ जीवन में, क्या प्रभाव होता है इसका। वो खाना ब्रह्मा भोजन हो गया, तुरंत स्वीकार हो गया ऊपर, जैसे आपने संकल्प किया खाना बाबा के लिए बना रहे हैं, भोजन तुम्हारे लिए। हर कर्म भाइयों को रहता है घरों में, कमा रहे हैं किसके लिए? परिवार के लिए, बाबा के लिए नहीं। ये हो जाए तो कमाल ही हो जाए ना। इसको चेंज करें, मेरा हर कर्म तुम्हारे लिए, तुम्हारे दिए हुए से पालना कर रहे हैं परिवार की। यह अलौकिकता, इस संकल्प का प्रभाव पूरे धन कमाने का जो कर्म होगा उस पर दिखाई देगा। तो आप सोच लें, कर्म करने से पहले यदि हम वरदान को याद कर लें, नशे के साथ बाबा ने फिर ये कहा था, वरदान की खुमारी हो जाए, रुहाव नशा, मेरे साथ ही वरदान है, बोलने की बात नहीं, अंदर अंदर बोला नहीं जाता, ये वरदानों को बोलना नहीं चाहिए, अंदर नशा हो जाए, भाई मुझे बाबा का वरदान है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। याद कर लो, कोई भी कर्म करने जा रहे हैं, बच्चे को भेज रहे हैं आप परीक्षा देने के लिए, बच्चों को भेज रहे हैं नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए, उन्हें भी सिखा सकते हैं, अच्छी फीलिंग से जाओ। देखो कैसे जाते हैं बच्चे इंटरव्यू देने, कि अरे नौकरी कहाँ मिलेगी, क्या कर दिया, गड़बड़ कर दी ना। मैंने कई से प्रैक्टिस कराई है, ये प्रैक्टिकल अनुभव है लोगों के, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, मैं से पूछा क्या करें भाई, कल हमारा इंटरव्यू है, मैंने पक्का कराया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरा सिलेक्शन होगा ही, और रिजल्ट ऐसा ही हुआ। का पैसे दिए हुए थे बहुत सारे, अप्रोच वाले थे मंत्रियों की, सबको रिजेक्ट कर दिया, मेरा सिलेक्शन हुआ, जिसने पैसा ही नहीं दिया था। कम से कम 10 अनुभव है मेरे पास पिछले साल के। कर्म से पहले हमारे संकल्प क्या हैं, संपूर्ण कर्म पर उसका प्रभाव रहता है। इसलिए कुछ वरदान चुन लें हम अपने लिए और कर्म से पहले उसकी प्रैक्टिस करने लगें, देखो जीवन का आनंद फिर। इस तरह हम वरदानों का अनुभव करेंगे। चारों सब्जेक्ट जो हमारे हैं, सेवा, माताओं को विशेष रूप से ये रहता होगा, हम तो छोटी सेवा करते हैं, लोग तो बड़ी बड़ी सेवा करते हैं, भाषण करते हैं, रहता है, रहता है, लेकिन हमें गति समझ लेनी है, जिसको जो सेवा मिली है सच्चे दिल से सेवा करना, माना फुल मास लेना। मुझे याद है भोली दादी को बाबा कहते थे, ससुर की बात, तब हम बहुत मिलते थे ना पर्सनली, डॉक्टर पर्सनली बहुत, बाबा ऐसे ही छोटे सी जगह में आता था, सब मिल रहे, सबको कुछ ना कुछ कह रहे, बाबा टोली दे रहे, अच्छी तरह से भूल लाई जाती थी तो पूरा ही भर के दे देते थे, अपना रुमाल भी नैपकिन भी दे देते, इसमें डालो ले जाओ। तो एक बार कहा कि बच्ची ये ना सोचना कि मैं तो कोई बड़ी सर्विस नहीं करती, सच्चे दिल से सेवा करती हो। उसको तो सीधा ही कह दिया था, सेवा में तुम्हारे 100 मास हैं, भगवान ने कह दिया। जो सेवा जिसको मिली है सच्चे दिल से करना, निर्विघ्न रूप से करना, बाबा की सेवा है, निमित्त भाव से करना, मैपन से मुक्त होकर करना, फुल मास। चाहे आप भोजन बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, ये बिल्कुल ना सोचो, भगवान ने मौका दिया, अपने यज्ञ में हमें स्थान दिया, कितनी बड़ी चीज है, भगवान ने अपने यज्ञ में स्थान दिया है, इस खुशी से, इस नशे से, कुछ भी सेवा आप कर रहे हैं। हमारी बहनें बैठी हैं, मान लो वो किसी की ब्राह्मणी है और अपनी दीदी दादी की सेवा कर रही है, ये संकल्प है हम बाबा की यज्ञ सेवा कर रहे हैं, फुल मार्क्स हैं। तो सेवा के पीछे भावना क्या है? कोई सेवा बहुत कर रहे हो लेकिन संकल्प ये हो मेरा नाम हो जाए, ऐसी सेवा करूं नाम हो जाए, बस मैं ही मैं हूं, तो क्या होगा? मैं हूंगा ही नहीं, जीरो हो जाएगा ना। इसलिए बाबा ने कह दिया जिसके पास निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी नहीं है, चाहे वो रात दिन सेवा करे, केवल 5% ही जमा होता है। याद रखनी है ये बात 3 साल पहले की। तो हम सभी अब वो काम करेंगे जो बाबा ने इससे पिछली मुरली में कहा था, टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल याद है, इस कर्म में ये स्वमान, इस कर्म में ये स्वमान, ये है सहज कर्म योगी बनने का तरीका। आप संकल्प कर लें, देखो मैं उदाहरण दे दूं, यहां आपको सवेरे सब्जी काटनी है, संकल्प कर दो मैं एक महान आत्मा हूं। आपको रोटी बनानी है, संकल्प कर दो बाबा को बुलाना है, बाबा आ जाओ। छोटे छोटे काम हैं, छोटे छोटे काम, पानी पीना, चाय पीना, भोजन खाना, ये भी तो काम है ना। संकल्प कर दो जब भी पानी पिएंगे, चाय पिएंगे, दूध पिएंगे, मैं फरिश्ता हूं, ठीक है। भोजन खा रहे हैं, मैं इष्ट देव इष्ट देवी हूं। और किस मुरली सुन रहे हैं, बाबा ने हमेशा कह दिया है मैं आत्मा इस तन में अवतरित हुई हूं, गॉडली स्टूडेंट हूं, भगवान पढ़ाने आया है। किसी और कर्म में मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं। छोटा सा एक अभ्यास कर लें आप, देखो कई बार अपने कमरे से क्लासरूम तक सवेरे आएंगे, शाम को आएंगे, बाबा के रूम में जाएंगे, जब भी हम सड़क पे चलेंगे मैं लाइट हाउस हूं, ऐसे कम से कम दस। बड़े बड़े अभ्यास भी डाल सकते हैं, बाबा सिर के ऊपर छत्र छाया है, और कोई अच्छा अभ्यास करें, वो जो बाबा ने कहा जो अभ्यास अमृत वेले हैं वैसे ही दिन में हो, बाबा की किरणें आ रही हैं। बहुत अच्छी सकाश देने की विधि सिखाई है, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, हमारे सामने बहुत सारी आत्माएं रहती हैं, मुझसे शक्तियों की किरणें पड़ रही हैं सब पर, ये पावरफुल अभ्यास हो गए। ऐसे हरेक अपना अपना टाइम टेबल स्वयं बनाए, लौकिक में रहते बनाए, आपके आप स्टूडेंट हैं सिखा सकती है माताएं, तो स्कूलों में हर पीरियड में क्या स्वमान का अभ्यास करें, छोटी छोटी बात। आप टीचर हैं पढ़ाते हैं, हर पीरियड में इसी स्वमान का अभ्यास करेंगे। तो अपने कर्मों में भिन्न भिन्न स्वमान को जोड़ लें तो योग भी सहज हो जाएगा, क्योंकि स्वमान ही ऐसी प्रैक्टिस है जो हमें योगयुक्त बना देता है। स्वमान से ही सबसे सुंदर से सुंदर अनुभव होंगे। कल देखो मुझे कुमार का फोन आया, मुझे बड़ी दया आई उस पर, शाम को आया 6 बजे, मुझे क्लास कराने के नीचे मैं जा रहा था, फोन आया, कहा मुझे व्यर्थ संकल्प बहुत चल रहे हैं, चलते हैं, और ये कह के रोने लगा, फोन पे आवाज आने लगी उसकी। मैं देखा ये अपने व्यर्थ संकल्पों से आत्मा कितनी दुखी हो गई है, अनकंट्रोल्ड, नहीं चाहते वही वही आ रहे हैं। बोलो क्या सिखाएं ऐसे को, स्वमान करो, वो तो होता ही नहीं ना, नशा चढ़े तो व्यर्थ कहां रहेगा, नशा तो चढ़ता ही नहीं। भगवान मिला, मिलके गए, मैंने पूछा बाबा से, हाँ नशा नहीं चढ़ा, भगवान मिला, कि चढ़ा तो था पर बस उतर गया फट से। कहा व्यर्थ संकल्पों का वेग इतना ज्यादा है कि सिर फटा जा रहा है मेरा, कहने लगा। तो मैंने उसे कहा अभी बस बैठ जाओ, कागज पेन लेकर लिख दो 1008 बार मैं एक महान आत्मा हूं। मुझे बताना रात को क्या रहा, रात को फिर बेचारे ने फोन किया, मैं ऊपर आ गया था कि थोड़ा शांति मिल गई है थोड़ा सा, क्योंकि एकदम तो फर्क होगा नहीं। फिर आज के लिए मैंने उसे बताया था अभ्यास करना लिखना, न अभ्यास हो तो लिखना, मैं मास्टर सर शक्तिमान हो बताएगा मुझे रात को। तो देखिए मैं सोचा कि मनुष्य जब पाप करता है, मनुष्य जब फिल्में देखता है, मनुष्य जब बुरे संग में, युवक जब बुरे संग में चले जाते हैं तब वो बड़े मस्त रहते हैं, वाह हम जैसा कोई नहीं, और जब उसका परिणाम सामने आता है तो सिवाय पश्चाताप के उनके पास कुछ नहीं रहता। कितने बुद्धिमान कुमार बेकार हो गए बुरे संग में जाकर, बिल्कुल कहां फर्स्ट टॉप क्लास, हाई स्कूल तक फर्स्ट क्लास, बारहवीं तक भी बहुत अच्छे, उसके आगे डाउन, बुरे संग में डाउन ऐसे हुए कि बस परिवार भी परेशान खुद भी परेशान, मरने के तैयार, सुसाइड कर ले। मैं कहा नया प्रोग्राम, अब सुसाइड के बाद क्या होगा तुम्हारा भाई, तुम्हें पता है पूरा कल्प बेकार हुआ, और अब से और विनाश तक आत्मा अंधकार में भूखी प्यासी भटकती रहेगी आकाश में तड़पती हुई। लोग सोचते हैं मर के बहुत सुख हो जाएगा, सुसाइड करने के बाद आत्मा सूक्ष्म शरीर लेके अंधकार में भूखी प्यासी उसी फीलिंग में जिस फीलिंग में मरे हैं। अब यहां तो किसी को बुरी फीलिंग हो, भाई आपस में बात करेंगे, ज्ञान सुनेंगे, सेवा करेंगे, ठीक भी हो जाएगी ना। अब वो मर गए, बहुत दुखी होके सुसाइड किया है, वही दुख की फीलिंग चलती रहेगी जब तक आत्मा मुक्त हो परम धाम जाए। कौन मुक्त करेगा उसे, कौन? शिव बाबा नहीं, हम हमारे वाइब्रेशंस, हम में से जो बहुत अच्छे योगी होंगे उनके वाइब्रेशंस इनको मुक्त करेंगे। इसलिए बहुत बड़ी बात बाबा ने कही, तुम्हें केवल अपने विकर्म ही विनाश नहीं करने हैं, बहुतों के करने होंगे। ऐसा समय आएगा जब हमें अपने लिए कुछ नहीं करना, हम वाइब्रेशंस देंगे कि ऊपर भटकती हुई करोड़ों आत्माएं जो दुखों में भटक रही हैं शांत हो जाएं और वापस चलें। वापस चलने से पहले उनका चित्त संपूर्ण रूप से शांत होगा, बिल्कुल जीरो पर आ जाएगा मन, नो थॉट, तब मुक्त होंगे। याद होगा आपको बाबा ने अभी अभी कहा इसी सीजन में, जब तक तुम सभी आत्माओं को दुखों से मुक्त नहीं करते तुम मुक्ति धाम में नहीं जा सकोगे। चैलेंज कर दिया भगवान ने, मेजर साहब देख लो अब कितनी बड़ी बात कह दी। मैं तो मैंने लिखा हुआ हूं, मैं ऐसे महावाक्य अलग से लिख के रख देता हूं, जब भी पढ़ता हूं तो सोचता हूं कितना बड़ा काम दे दिया है। इतने बड़े काम करने वालों को क्या छोटी बातों में रहना चाहिए, इतने बड़े काम करने वालों को ही कहा है तुम्हारा एक एक मिनट सालों के बराबर है, क्योंकि बहुत बड़ा काम करना है। ये आम आत्माओं के लिए नहीं है, ब्राह्मणों में भी ये उनके लिए है जिनको ये बड़े काम करने हैं। तो हम सभी तैयार करें अपने को, बहुत ऐसा समय आ रहा है, सुंदर भी उसे कहेंगे और धर्मराजपुरी भी कहेंगे। एक ओर जय जयकार होगी, दूसरी ओर इस संसार में हाहाकार हो जाएगा। शब्द ही कितना भयानक है, हाहाकार हेती में हुआ है। अगर उसकी फिल्म कोई बना दे जो कुछ वहां हुआ, सैटेलाइट से तो रिकॉर्डिंग होता रहता है ना, अगर उसको कोई दिखा दे तो ये जो इन्होंने फिल्म बनाई ना विनाश की, फीकी पड़ जाए कि असली तो ये है। 2 लाख लोग गए एकदम से, और भी कितने गए हैं, 2 लाख के परिवार यदि बचे हों 4 लाख तो उनका हाल क्या हुआ होगा। अब मरने वाले तो मर गए लेकिन असली दुख तो जिंदों को होता है ना, कितना हाहाकार फैला होगा, निराशा फैली होगी देश में। छोटा देश है, 75 लाख तो आबादी उसकी, उसमें से 2 लाख मर जाए, प्रेसिडेंट भी दुखी, प्राइम मिनिस्टर भी दुखी, सब दुखी, उनके भी तो घर टूट गए, हाहाकार हो जाएगा। ऐसे में हम अपने को तैयार करें अब से ही हमें वाइब्रेशंस देकर आत्माओं के दुख हरने होंगे। बाबा ने कह दिया था ना पिछले साल, जिन्हें तुम सकास दोगे उनके मन में तुम्हारे लिए भावना हो जाएगी, वो तुम्हें इस देव देवी रूप में स्वीकार कर लेंगे, वो भक्ति करेंगे द्वापर युग के बाद, तुम्हारी भक्ति काल रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य हम सबको करना है, जिनको करना हो वो छोटी बातों में न रहकर कहीं न उलझकर महानता की ओर चलें, कमाई की ओर चलें। इतनी एनर्जी हमें जमा करनी है कि जो हम सबको दे सकें, अखंड भंडार करने होंगे हमें। अखंड भंडार चलाते हैं ना भाई, जो आए खाते जाओ, अखूट अखंड भंडार वाइब्रेशंस देने के, सकास देने के, आत्माएं सुखी होती जाएं। तब हम ये नहीं सोचेंगे ना, हमें सोचना है कि इन्होंने बहुत पाप किए हैं, अभी भुगतने दो, वो तो भुगत ही रहे हैं बेचारे। हमें तो सकास देकर उनके चित्त को शांत करना होगा। सभी इस तरह स्वमान का अभ्यास करें, वरदान बना दें स्वमान को, किसी भी एक वरदान में स्पेशलिटी कर लें। स्पेशलिस्ट होते हैं ना डॉक्टर्स भी, एक वरदान में विघ्न आए हैं तो इनके पास चले जाओ, सफलता चाहिए इनके पास चल जाओ, बात बिगड़ गई है बनानी है इनके पास चल जाओ। हम भी ऐसे स्पेशलिस्ट बन जाएं एक एक वरदान के, फिर देखो बहुत अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा। और बहुत सुंदर बात है कि विनाश काल में हम दूसरों के काम आ जाएंगे, बहुत बड़ा योगदान होगा इस सृष्टि को कि हम दूसरों के काम आ जाएं। ऐसी सबको तैयारी करनी है। ओम शांति।